सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अंजुम, हमने बार बार देखा है कि हम गवर्नेंस के सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन में, ग्रोथ में, रेलवेज में, ट्रेड कॉरिडोर में, हर जगह गवर्नेंस पे आ जाते हैं। तो आज क्यों ना गवर्नेंस पे सोचें, ये गवर्नेंस है क्या चीज़। एक जो मैंने रिसेंटली आर्टिकल देखा था उसके बारे में ज़रा बात कर लें। ये अली सलमान साहब हमारे एक बड़े अच्छे यंग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट शुरू किया कॉल्ड द प्राइम इंस्टीट्यूट। इसमें ये मजेदार बातें करते रहते हैं। ये कुछ मेरी तरह थोड़े लिबर्टेरियन भी हैं तो इस वजह से इनके साथ और दोस्ती है। तो गवर्नेंस के हवाले से ज़रा इनके साथ मेरा ख्याल बात करें। इन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है ECC पे। ECC क्या इदारा है, कैसे, आपको अंजुम इसके बारे में क्या पता है ECC के बारे में, यहाँ से शुरू करेंगे।
नदीम, मुझे ये पता है कि इस इदारे में बहुत से सबसे जो अहम फैसले हैं जिनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे किए जाते हैं।
पर ये बताइए कि अपार्ट फ्रॉम जो आप अखबार में देखते हैं, कुछ आपको इसके, आप माशाल्लाह देखें ना अंजुम, आप लम्बे बढ़ाते रहे हैं। आप अभी हबीब यूनिवर्सिटी जो माशाल्लाह हमारी बहुत मरूफ यूनिवर्सिटी है उसके प्रोवोस्ट हैं, अब बड़े वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं। आपको क्या ECC के बारे में कितनी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि मुझे ये लगता है, मैं तो ECC में बैठता रहा हूँ 3 साल, मुझे वहाँ जाने से पहले बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी ECC के बारे में।
नदीम, मुझे एक तरह से ये अजीब बात भी लगती है, मगर मुझे इसमें कभी दिलचस्पी नहीं हुई क्योंकि मुझे इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आती थी, इसमें कोई एक सेंसिबिलिटी नज़र नहीं आती थी। तो जिस तरह हमारी हुकूमत चीज़ों के फैसले करती रहती है, उनकी एक कमेटी है, वो उसमें फैसले करते हैं।
तो जी अली साहब, ये बताइए कि मैं भी अंजुम की तरह कभी नहीं सोचा था ECC कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो फिर वहाँ जाके एकदम बैठना शुरू किया और देखना शुरू किया तो मेरी तो आंखें फट गई, मैं बड़ा परेशान हो गया। तो मुझे बताइए कि ये ECC की हिस्ट्री क्या है? मैं तो हैरान हूँ जब इस पर मैंने पढ़ा, आप बताइए प्लीज़ क्या हिस्ट्री है ECC?
जी बहुत शुक्रिया नदीम उल हक साहब, अंजुम अल्ताफ साहब। ECC हमारे पाकिस्तान में आप समझ लें कि इकोनॉमिक गवर्नेंस का एक लिंच पिन की हैसियत रखता है, जहाँ पर अहम तरीन माशी फैसले होते हैं। तारीखी तौर पर ये वॉर टाइम कैबिनेट के तौर पर बनाई गई थी 1965 की जंग में, और जंग तो 17 दिन में ख़त्म हो गई, मगर पिछले 45-50 साल से कमेटी वैसे ही चल रही है जैसे कि हम जंग के ज़माने में काम करते थे, एमरजेंसी की बुनियादों के ऊपर।
ये एमरजेंसी कमेटी है और ये एमरजेंसी ही चल रही है।
तो ये जो इसका मोड है इकोनॉमिक डिसीजन का, वो तो ऐसे ही लगता है कि जिस तरह मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज इसमें, जिसको अगर आप कंपोजिशन देखें तो जो अहम तरीन जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं इस वक्त 11 वजारतें इसमें शामिल हैं, फाइनेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ लॉ एंड जस्टिस भी है, फूड सिक्योरिटी, पेट्रोलियम, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, रेलवेज एंड वाटर एंड पावर। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो इसमें वजारतें शामिल है, इसके अलावा सेक्रेटरीज इसमें शामिल होते हैं और साथ ही साथ स्पेशल इनवाइटीज के तौर पर।
सर एक सेकंड, ECC जरा बताए ना हमें है क्या ये इकोनॉमिक, क्या
इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी?
तो इसका काम, यानी कि इसके कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, क्या काम इसका कोऑर्डिनेशन है?
जी, जो इसका जो मैंडेट है वो काफ़ी ज़्यादा तफसील से, तकरीबन इस पर 14-15 पॉइंट हैं जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस कैबिनेट डिवीजन ने इसको नोटिफाई किया था, जिसमें कि आप समझ लें सारी मईशत इसमें उसमें कवर होती है, अर्जेंट इकोनॉमिक मैटर्स भी कवर होते हैं, वेलफेयर स्टेट के बारे में भी इसका जिम्मेदारी है, मॉनेटरी और क्रेडिट सिचुएशन को भी देखना इसकी ज़िम्मेदारी है, इम्पोर्ट पॉलिसी भी देखना इसकी ज़िम्मेदारी है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखना भी इसकी ज़िम्मेदारी है, प्राइस सिचुएशन देखना भी इसके मैंडेट में शामिल है, इसके अलावा कोई ऐसे टास्क जो कैबिनेट असाइन करे, इसके अलावा ऑयल प्रॉस्पेक्टिंग एक्सप्लोरेशन इसका सब्जेक्ट है, ऑटोनोमस बॉडीज़ के मुतालिक ये फैसले करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में ये फैसले करती है, प्राइवेट सेक्टर ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना हो तो ECC से पूछना पड़ता है, फिस्कल अनोमलीज को रिमूव करना हो, मिनी बजट्स जिसको आप कहते हैं, और वो ईसीसी लेके आती है।
माशाल्लाह, मिनी बजट्स मतलब पार्लियामेंट का कोई इख्तियार नहीं है, ईसीसी का इख्तियार है।
जी अभी तकरीबन 4 महीने पहले जो ईसीसी ने तकरीबन 40 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए थे, जब 1% रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोर्ट आइटम्स पे इजाफा किया गया था, और वो ईसीसी ने ही लगाए थे, और उसी वक्त ये नाफिजुल अमल हो गया था,
और पार्लियामेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
पार्लियामेंट तो दूर की बात है जी, इसमें तो कैबिनेट की भी अप्रूवल इस वक्त ज़रूरत नहीं है, ईसीसी बजाते खुद फुल कैबिनेट की तरह काम करती है।
वो डार साहब ने परमिशन ले ली है कि आप जनाब कैबिनेट के पास जाने की, तो ईसीसी बजाते खुद एक कैबिनेट बन चुका है।
जी ईसीसी बजाते खुद एक कैबिनेट बन चुका है।
अली अली ये बताएं कि ये इसका जो तरीकाकार है वो क्या है, मसलन ये कैसे फैसला होता है कि एजेंडा पे क्या आइटम आएगा और उस पर कितनी तैयारी होती है, उसका होमवर्क कौन करता है, इसकी एडवाइजरी कोई और सब कमेटी है, इसका प्लानिंग कमीशन से क्या ताल्लुक है, ज़रा इसके मुतालिक हमें बताइए।
जी इसमें ये जो 11 वजारतें शामिल हैं, ये ही वजारतें कोई रिकमेंडेशन या पॉलिसी के तौर पर एक समरी प्रेजेंट करती हैं ईसीसी के प्लेटफॉर्म पे। उसूली तौर पर तो जो उनके रूल्स में लिखा हुआ है कि कम से कम 7 दिन का इसमें नोटिस होता है, जिसमें वो पहले प्रपोजल सर्कुलेट होती है, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ कमेंट्स आते हैं, उसके बाद जाकर ये उस टेबल पे ईसीसी के एजेंडे पर आती है बात। लेकिन देखा ही गया है कि आमतौर पर उसी दिन जिस दिन मीट इजलास हो रहा है, जैसे फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान ने कोई नई पेट्रोलियम पॉलिसी लॉन्च करनी है या एलएनजी का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसी दिन बाकी वजारतों को या बाकी बुजुर्गों को बताया जाएगा कि जी आज हमने ये डिसीजन करना है। उससे पहले कोई डेलीब्रेशंस का प्रोसेस है बहुत शॉर्ट होता है या नहीं होता है, तो इसीलिए उसको हम एक जिस तरह कहा गया था कि पहले वो हंगामी तौर पर फैसले करने के लिए बनाई गई थी, बदकिस्मती से अभी भी ऐसे ही ज़्यादातर होता है, उसके अंदर डेलीब्रेशन नहीं होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन नहीं होती है,
यानी कि अभी भी हंगामी हालात है।
अभी भी हंगामी हालात है जी।
और इसके जो फैसले होते हैं वो क्या वोट के जरिए होते हैं, तो मेजॉरिटी वोट की ज़रूरत है या कोई और तरीकाकार है?
इसमें भी एक इंटरेस्टिंग जो अभी हाल ही में सागदार साहब ने भी ऑब्जर्व किया था, इसमें डेलीब्रेशन के बाद उन्होंने कहा था कि जी जो भी इख्तलाफात हैं ये बाकायदा मिनट्स में रिकॉर्ड ऑफ डिसीजन में भी आया था, अगर मुख्तलिफ वजारतों के इख्तलाफात हैं तो उन्होंने ये एडवाइज़ किया कि पहले आप इसको रिमूव करके उसका कंसेंसस बिल्ड करके फिर आप ईसीसी के उस पर पुट करें, ताकि उसके ऊपर ऐसे कोई बज़ाहिर ऐसे लगता नहीं है कि कोई इख्तलाफात होते हैं। जो जो अखबारी इतलात हैं, मैं उसके अंदरूनी हालात की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो उसी तरह ही पोर्ट्रे होते हैं, और उसको फिर फाइनेंस मिनिस्टर बेसिकली रूल कर रहे होते हैं। मतलब ये देखें कि हिस्टोरिकली तो ये प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट था, मगर हाल ही में शौकत अजीज़ साहब के अलावा किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इसको खुद से चेयर नहीं किया, वो फाइनेंस मिनिस्टर ही डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बन के फिर उसको चला रहे होते हैं। तो इसमें फिर वो फैसला साजी के अंदर मुख्तलिफ जो आरा हैं वो सामने नहीं आती, इख्तलाफ राय सामने नहीं आता है।
मैंने जो देखा है, जो मैं आपको इससे छोटा सा जवाब दूँ, जो मैं वहाँ था, तो एक तो ये चीज़ है कि बड़ी जल्दबाजी से प्रपोजल्स आते हैं। मिनिस्टर साहब को ख्याल आया, सेक्रेटरी साहब ने फौरन प्रपोजल डाल दिया, सेक्रेटरी साहब को ख्याल आया फौरन प्रपोजल डाल दिया। जैसे आपको जब आप वर्ल्ड बैंक थे, मैं IMF में था, हमें एक तरीक़ेकार सिखाया गया था कि प्रपोजल बनाने के लिए आपको कम अज़ कम 3-4-5 महीने रिसर्च की ज़रूरत है, और जब आप बोर्ड के पास जाएं, जो हमारा ECC है, बोर्ड के पास जाएं तो एक ऐसा क्या कहते हैं मजबूत किस्म का प्रपोजल लेके जाएं जिसके अंदर आपने पूरी छानबीन रिसर्च की हो, जिसके अंदर आपने पूरे प्रपोजल्स की नौइयत और जो उसके इम्प्लिकेशन हैं डिस्कस किए हों, वो प्रपोजल लेके जाएं और उनको दें 2-3 हफ्ते, पहले सारे डिपार्टमेंट्स को दें 2-3 हफ्ते समझने का, फिर उनको दें, बोर्ड को दें 2-3 हफ्ते समझने का, इन प्रपोजल्स को कमेंट करने का, फिर एक डिसीजन बाकायदा वोट्स गिन के ली जाए। मैंने देखा ये निज़ाम हमारे यहाँ है ही नहीं, हम हंगामी हालात में होते हैं, हर गवर्नमेंट कहती है आज ही सब कुछ करो, तो इसकी वजह से ये है कि आपका कोई टाइम नहीं है काम करने का, और कोई टाइम नहीं है आपको प्रपोजल देने का, और कोई टाइम नहीं डेटा इकट्ठा करने का प्रपोजल देने के लिए। फिर जबकि आपकी डिसीजन का वक्त आता है, ECC में जो डिस्कशन होती है उसमें मिनिस्टर साहब और कोई कोशिश नहीं करते वोट्स गिनने की कि लोग कहाँ हैं, उसमें सेक्रेटरी साहब भी बैठे होते हैं और सेक्रेटरी साहिबान जो कि ज़्यादा होते हैं मिनिस्टरों से, कई दफ़ा मिनिस्टर कम आते हैं, सेक्रेटरीज बहुत होते हैं, सेक्रेटरी साहिबान ज़्यादा तकरीरें करते हैं और मिनिस्टर साहब ने पहले से उनसे बात की होती है, तो उस तरह डिसीजन हो जाती है। ये निज़ाम जो है, अब आप लोग बताएं इसके बारे में क्या ख्याल है।
नदीम ज़रा पहले ये बता दीजिए कि इन ये जो फैसले हैं इनका प्लानिंग कमीशन से क्या ताल्लुक है?
बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं, हालांकि रूल्स ऑफ वो बिजनेस में लिखा हुआ है कि प्लानिंग कमीशन के कमेंट्स पहले लेना ज़रूरी है और उन कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है, पर अक्सर प्लानिंग कमीशन के कमेंट्स अवॉइड करते थे लेने में और अक्सर वो कोशिश करते थे प्लानिंग कमीशन को अवॉइड किया जाए। पर ये तो फिर जब आप एक हंगामी हालात में आ जाएं, जब आप कहें कि बिजली के हंगामी हालात हैं और हमें ज़रूर बिजली का निज़ाम आज ही ठीक करना है, सी पैक का निज़ाम हमें आज ही ठीक करना है, तो फिर तो आप हंगामी हालात में चल सकते हैं ना।
नदीम ज़रा ये भी बता दीजिए या अली शायद बता दें कि अगर 3-4 साल बाद हम ये मालूम करना चाहें कि इस फैसले पर किन किन लोगों ने इख्तलाफ किया था, तो वो हमें मालूमात मिल सकती हैं या नहीं?
अली बताइए।
जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं इनके फैसलों के, उसके ज़रिए तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इसमें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को थोड़ा सा मोबिलाइज़ करना पड़ेगा, अगर हम कैबिनेट डिवीज़न से ये मालूम कर सकें कि किस वजीर के किसी पॉलिसी के ऊपर क्या राय थी। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में तो इस वक्त ये इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एक्सेस होनी चाहिए।
अली ये बताइए कि आपने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है, माशाल्लाह एंजॉय जो पेपर है, वेरी गुड पेपर। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर आप लेट्स से पिछले 1-2 साल की ईसीस पे, जो आपके पास थोड़ा डेटा है, ईसीसी पे आप गौर करें, तो ईसीसी के जो डिसीजंस हैं ये क्या बजट के लाइन में रहती है या बजट से इख्तलाफ करती है?
जी मैंने इसमें ये कोशिश की थी कि इस रिसर्च में पिछले तकरीबन जो 2.5 सालों में जो इजलास होते हैं, बहुत रेगुलरली इसके इजलास होते हैं, बार बार एक महीने में भी एक से ज़्यादा इजलास इसके हो रहे होते हैं, तो मैंने ये कोशिश की थी कि 40 डिसीशंस मैंने इसका एनालिसिस किया था। जो ये 40 फैसले वो हैं जिनके ऊपर एक प्राइस टैग इस्टेब्लिश्ड है, कि और कुछ ऐसे भी बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर क्लियरली ईसीसी पॉलिसी बनाती है मगर उसका कोई बज़ाहिर कोई बजटरी इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। तो ये बजट से अलहदा से फैसले होते हैं, यानी ये बजट से, जैसे मैंने अपनी रिसर्च पेपर में ये एस्टिमेट किया, तकरीबन 750 अरब रुपए के फैसले हुए इन 40,
यानी 750 बजट को तोड़ने के फैसले हुए।
जी 750, जी बिल्कुल
750 बिलियन के,
750 अरब बिल्कुल बिलियन रुपीस के फैसले हुए,
बजट तोड़ने के, यानी कि तकरीबन 3% GDP बजट तोड़ दिया गया इन फैसलों में।
जी एग्जैक्टली, और इसके अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम उस वक्त फाइनेंस डिवीजन एक कंटिजेंट लाइबिलिटी के अंदर डाल देता है, कोई इसको सॉवरेन गारंटी के अंदर डाल देता है, कोई इसको सब्सिडी के अंदर डाल देता है।
हमें लोग कहते हैं कि आप जार्गन बहुत यूज़ करते हैं, जरा थोड़ा सा रुक जाए प्लीज़, मुझे फिर लोग गालियाँ देंगे। ये बताइए कि आप क्या कह रहे हैं, क्या मतलब सॉवरेन गारंटी, ये क्या चीज़ है, क्या आप कर रहे हैं?
जी मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पाकिस्तान की, उसमें एक फैसला आया वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के इमा के ऊपर कि इनके जो कलेक्शंस के इश्यूज हैं उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चूँकि देती है गारंटी, तो उन्होंने कुछ 25 अरब रुपए की एक गारंटी पास कर दी के जो जिससे पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कोज हैं, उनके हालात कुछ बेहतर हो सकें। इसके अलावा PIA ने रिक्वेस्ट कर दी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ थ्रू एविएशन डिवीजन एंड प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, जी हमें अपने क्रिटिकल इक्विपमेंट ख़रीदना है तो उसके लिए हमें गारंटी की जाए, तो अब वो गारंटी ये ECC कर देती है, तो 12 अरब रुपये की उनको गारंटीज़ मिल गई, जिसकी वजह से फिर वो PIA ने, एविएशन डिवीजन ने वो PIA के लिए परचेज कर ली।
कुछ वो भी तो था, ये गेहूँ खरीदने के लिए भी तो गारंटीज देते हैं कि क्या होता है, वो क्या निज़ाम?
इसको हम यूजली कहते हैं जी सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वीट, जो यूजली मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के तहत आती है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज वो अप्रूव की जाती हैं, जैसे उसके अंदर मुख्तलिफ हमें आपको मिलता है। एक फैसला 2015 में हुआ कि इन्होंने कहा कि जी हमें कोई गंदम ख़रीदने के लिए, इसमें खैर ये भी था कि IDPs के लिए जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल थे उनके लिए ये फैसला किया गया कि जी हंगामी तौर पर हमें उनके लिए गंदम ख़रीदनी है तो कोई सब्सिडी चाहिए, तो वो 6 अरब रुपये की सब्सिडी उन्होंने पास कर दी। तो कुछ ऐसे फैसले हैं जहाँ हमें नज़र आता है कि जहाँ शायद फौरी तौर पर मार्केट एक्ट ना कर सके, किसी इमरजेंसी की शक्ल में हमें कमोडिटीज़ ऑपरेशन की सूरत में जाना पड़े, तो उसके लिए फिर फ़ौरन ECC को बुला लिया जाता है और ECC फिर वो फैसले कर लेती है।
एक और भी तो चीज़ होती है हर साल हंगामी तौर पे, फर्टिलाइज़र भी तो 2 दफ़ा साल में मंगवाया जाता है, या मैं गलत हूँ?
जी बिल्कुल, फर्टिलाइज़र भी जब वो एक उसकी शॉर्टेज होती है तो उसकी भी अप्रूवल फिर ECC ही करती है।
एक अंजुम छोटी सी आपसे बात पूछूँ कि ये हर साल तकरीबन अप्रैल में और तकरीबन अक्टूबर नवंबर में कुछ ऐसे ही है कि हर साल हंगामी शॉर्टेज हो जाती है फर्टिलाइज़र की, और फिर ECC को मोबिलाइज किया जाता है और फिर अरबों रुपए का फर्टिलाइज़र ख़रीदा जाता है बहुत जल्दी में। मुझे बताइए, आपने माशाल्लाह बड़ी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, कि ये जब एक चीज़ रेगुलरिटी से हो तो क्या वो हंगामी होती है या वो फोरकास्टेबल होती है?
नदीम, आप तो रेटोरिकल सवाल पूछ रहे हैं, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? मैं खुद हैरत से सुन रहा हूँ जो बातें अली बता रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है तो वो हंगामी नहीं हो सकती।
उसके लिए प्लानिंग क्यों नहीं हो सकती? वो क्यों नहीं ये प्लान करके करते, क्यों हंगामी तौर पे हर कुछ हो रहा होता है? जैसे आप IDPs का भी कह रहे हैं, अली मुझे प्लीज़ बताए, बात बताइए, चले ये बताइए कि बाकी दुनिया में भी कैसे काम होता है? बाकी दुनिया में भी तो हंगामी हालात होते हैं ना, अब यूरोप में रेफ्यूजीज आए हुए हैं वगैरह वगैरह, क्या वहाँ भी ECC है?
जो इस वक्त ECC जैसे मैकेनिज्म है, एक तो चीज़ बहुत वाजह है, मैंने थोड़ा सा देखा था कि जो भी ऐसे डिसीजन है वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं लिए जा सकते हैं। अभी मुझे हाल
ये तो मेरा ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है
जी,
मेरे ख्याल ये कॉन्स्टिट्यूशन में
बिल्कुल। हाँ जी, कोई भी ऐसे फैसले जिसका ताल्लुक फाइनेंस से और बजट से हो वो आप पार्लियामेंट यानी कि वो बजट के बगैर नहीं लिए जा सकते। तो ECC एक लिहाज से एक यूनिक फिनोमेना है या एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसकी जो एटलीस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड में हमें इसकी मिसाल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फैसले ऐसे हैं कि जिसकी अप्रूवल पार्लियामेंट से नहीं ली जा रही।
अंजुम ये बताएं आप प्लीज, माशाल्लाह यू गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अराउंड द वर्ल्ड, क्या जब पार्लियामेंट बजट पास करता है वो एक लॉ की शक्ल होती है ना, तो जब लॉ बन जाती है तो लॉ को तोड़ा तो नहीं जा सकता, तो ये जो बजट को तोड़ते हैं ये फिर लॉ को तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे?
नदीम कुछ आपकी आवाज कट गई, मैं सुन नहीं सका।
मैंने कहा ये जो बजट है, जब बजट बनता है तो एक लॉ की शक्ल में पास होता है, तो जब बजट लॉ की शक्ल में पास होता है तो फिर उसको तोड़ना तो इलीगल हो जाता है ना। जब ECC ऐसी चीजें पास करती है तो क्या ये इलीगल एक्ट्स हैं कि नहीं?
बज़ाहिर तो इलीगल ही लग रहे हैं, सिर्फ ये है कि हो सकता है इन्होंने कोई खास परमिशन ली हो कि हम ऐसा कर सकते हैं।
बट जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की पावर्स बजट की हैं, तो आदोज डेलीगेटेबल
होनी तो नहीं चाहिए, मगर ये शायद अली ने इस पे कुछ देखा हो और हमें बता सके।
जैसे ये भी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने SROs को जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स हैं उसका प्रोसेस या हम ख़त्म कर रहे हैं या हम उसको बहुत कम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये दावा किया कि पहले ये पावर्स FBR के पास थी, तो उससे वो पावर लेकर उन्होंने कैबिनेट के पास रख दी हैं। अभी भी कानूनी तौर पर कैबिनेट के पास भी वो इख्तियार नहीं होना चाहिए कि या ECC के पास भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो मिनी बजट्स लगा सकें। लेकिन बहुत से ऐसे जो अंजुम साहब ने जिस बात का इशारा किया, अगर मैं उसकी इस तरह वजाहत करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब ये कहती है कि जी हम इसको बजट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करती है, जैसे वो सॉवरन गारंटी का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जैसे वो जैसे वो लोन्स का इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक लाइबिलिटी तो क्रिएट होती है फाइनेंस डिवीजन की हद तक, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी हम इसको बजट को, मतलब उनका ये दावा होता है कि हम बजट को मुतासर नहीं कर रहे। एक मैं मिसाल देता हूँ उसकी, उससे शायद मैं ज़्यादा वाजी हो जाए बात, कि 2014 में 30 अक्टूबर 2014 मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की माँ पर 136 अरब रुपए की सॉवरन गारंटी दी गई, जो कि बेसिकली टर्म फाइनेंस फैसिलिटी के तौर पर पावर होल्डिंग कंपनीज के लिए ECC ने अप्रूव की। ये वो रकम है जो जिसको आमतौर पर इसका एक बड़ा हिस्सा सर्कुलर डेट का एक बड़ा हिस्सा था, और एक वक्त में जब जब ये IPPs ने गवर्नमेंट के ऊपर, आपको पता है कि पिछले कई सालों में 3-4 दफ़ा सॉवरन गारंटीज़ कॉल हो चुकी हैं, तो वो गवर्नमेंट ने फिर वो पैसे कहीं ना कहीं से रिलीज़ करने होते हैं जो IPPs को जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने फिर इसको पेमेंट करके इसको कहीं पार करना होता है, तो वो बजट के दौरान नहीं हो रहा होता, लेकिन उसको सॉवरन गारंटी के तौर पर रिफ्लेक्ट करके उसको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट कर लेते हैं।
बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि अमरीका में अगर कोई किचन कैबिनेट जो है वो सारे फैसले कर ले और कांग्रेस को बिल्कुल बाईपास कर दे, तो उस तरह की सूरत नज़र आ रही है, और ये तो कोई अच्छी जो है खुशायन बात नहीं है।
इसके अलावा मैं अभी आपसे एक और भी इसमें पेपर में जिक्र किया है कि ये तो हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी डिसीजन ECC के पास हैं जो प्योरली प्राइवेट सेक्टर डिसीजन होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने अपने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज है उसके तहत जो भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इजाज़त है कि वो 100% अपना प्रॉफिट को रिपैट्रिएट कर सकते हैं अपने होम कंट्रीज़ के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान के अपने अगर इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें वो अपना सरमाया जो जो डॉक्यूमेंटेड है, जो बैंक्स में रिकॉर्डेड है, अगर वो सरमाया से वो अमेरिका में कोई कंपनी एक्वायर करना चाहे या जो कोई और कोई प्लांट लगाना चाहे, तो वो ECC की अप्रूवल के बगैर भी ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने इस पर छोटी मिसाल भी दी है, जैसे हमारे कंपनी है जो कि ग्लास फैब्रिकेशन के लिए बड़ी मशहूर है, उन्हें रासुल खैमा में तकरीबन $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी, और वो $3 मिलियन उन्होंने पाकिस्तान से शिफ्ट करने थे रासुल खैमा में नया प्लांट लगाने के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर सके जब तक कि उनको ECC ने परमिशन नहीं दी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना उनको प्रोसेस लगा होगा। इसी तरह सीमेंट प्लांट्स बाहर पाकिस्तान के लगाने, अगर पाकिस्तान की कंपनी लगाने होंगे, तो वो उसके लिए भी अप्रूवल ECC देती है, चाहे वो निजी सरमायाकार निजी सरमाया की भी एक मुंतकली हो बाहर की तरफ।
यानी कि वही सूरत हाल है कि हंगामी हालात समझे जा रहे हैं इस मुल्क में, हंगामी हालात जो अयूब खान ने लगाए थे 1965 में वो अब तक चल रहे हैं, एटलीस्ट इकोनॉमिकली स्पीकिंग। हमें फ्रीडम आ गई है इन अदर सेंसेस, बट इकोनॉमिक फ्रीडम अभी तक हमारी इम्पेयर्ड है बाय द ECC। और क्योंकि अंजुम आपके जैसे लोग इस पर गौर नहीं करते तो ये निज़ाम आज तक चल रहा है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करें ना।
बिल्कुल सही कह रहे हैं नदीमा। अब कि मगर ये है कि किस किस चीज़ पे हम गौर करें, हर चीज़ का हाल यही है।
नहीं, मेरा मतलब ये बताइए, क्या इकोनॉमिस्ट इस चीज़ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर सकते हैं कि उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस मुल्क का नहीं पता? जवाब दीजिए अंजुम साहब, जवाब।
हर शख्स की कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होती है जिसमें वो उसका कंपैरेटिव एडवांटेज होता है और वो उस पर ज़्यादा बेहतर तौर पर और कर सकता है, वरना तो फिर आप वो टेलीविज़न के पैनल शो की तरह हो जाएंगे और हर चीज़ पर बात कर रहे होंगे और शोर कर रहे होंगे जिसको कोई सुनेगा नहीं।
इस तरह का स्पेशलाइजेशन के पीछे
अली ने किया है रिसर्च करके, उस तरह के काम की ज़रूरत है।
हाँ बिल्कुल, आई थिंक कंग्रेचुलेशन अली, बहुत अच्छा आपने काम किया। और कोई आपने आखिरी बात कोई बताना चाहेंगे इसके बारे में? या
इसका मैं एक आखिर में जो मैंने जो पेपर के आखिर में बात लिखी है कि ECC को हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, या ECC से हमारी किसी तरह इस इन इन फैसला साजी से हम कैसे निकल सकते हैं। तो इसमें जो एक असूली बात है वो तो मेरे नज़र में तो ये है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी बारहा कह चुके हैं कि इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, तो सबसे पहले ऐसे फैसले ECC के प्लेटफॉर्म पर नहीं आने चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर और मार्केट के बेसिस के ऊपर लिए जा सकते हैं, जैसे हमने अगले दिन आप ही अपने ही अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि LNG का फैसला है वो एक प्योर मार्केट ड्रिवन फैसला है, तो वो क्यों गवर्नमेंट उसके ऊपर खुद उसकी आती है या आप रूल्स बनाएं और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को काम करने दें, तो बहुत से ऐसे डिसीजंस की जरूरत ही नहीं रहेगी जिसके लिए ECC आमतौर पर कॉल की जाती है।
इसमें एक इसमें फॉलो अप सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए और अंजुम प्लीज आप भी गौर करिए कि जो मुझे नजर आता है ECC में, जो आपने भी डेटा दिया, जो मैंने देखा जो मैं 3 साल वहाँ था, कि ECC जिसको मैं कहता हूँ बहुत ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड है, ट्रांजेक्शन करती है, ठीक है, यानी कि खरीदो फरोख्त, इंटरफेयर करना मार्केट में, उस किस्म के काम करती है। क्या मैं इसमें गलत हूँ इस चीज़ में? और दूसरी सवाल ये है कि ECC ने, आपने जो स्टडी किया, ECC ने कितनी रिफॉर्म या प्योर पॉलिसी विदाउट ट्रांजैक्शंस सब्जेक्ट्स लिए अपने डिस्कशन में?
जी, इसमें कुछ हमें मिसालें मिलती हैं रिफॉर्म्स की। मैं एक मिसाल अपने पेपर में लिखी है कि इन्होंने पावर, ECC ने 30 अप्रैल 2015 में पावर पॉलिसी के अंदर एक रिफॉर्म लेके आया, जिसमें उन्होंने कहा कि NTDC को, जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, उसको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के कुछ फैसलों की हमें मिसालें मिलती हैं, जिसमें कहा था कि जी होल सेल पावर मार्केट आनी चाहिए और ये सिंगल बायर का जो तस्वुर है जिसने हमारे पूरे पावर के सिस्टम को एक तरह से एक कर्टेल किया हुआ है, उसकी पोटेंशियल को रोका हुआ है, उसको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। अगरचे उसके बाद उसके ऊपर मजीद काम नहीं हुआ, लेकिन हमें कुछ कुछ इसकी मिसालें मिलती हैं। जो जो ज़रूरी काम है, जो पॉलिसी रिफॉर्म का काम है, वो जाहिर है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, ये एक मुनासिब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो सकती है।
पर ये जो आपने 2 मिसालें दी हैं, इसमें आपने इनके पेपर्स देखे, वो पेपर्स क्या मजबूत थे?
ये बड़ा अहम आपने बात की है, मैंने कोशिश की है ये इंक्वायरी करने की कि पेपर्स वगैरह देखे जाएँ, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कोई सॉलिड पेपर्स मुझे नहीं मिल सके हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें कि जी बहुत ज़्यादा तहकीक हुई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है।
क्योंकि जो आप सब्जेक्ट्स कह रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल कोई 1990s से चले आ रहे हैं, तो अगर बार बार ECC इन पे चली जाती है और कोई मजबूत पेपर नहीं होते, मजबूत डिसीजन नहीं होती, डिस्कशन नहीं होती, तो फिर मुझे फिर थोड़ा सा फिक्र पड़ जाता है।
जी नहीं, आप सही कह रहे हैं कि उसमें तो फिर जाहिर है कि जब तक हम रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे तो उस वक्त तक तो फिर इस तरह के फैसले करने की तो फिर एक एकेडमिक वैल्यू हो सकती है इसकी कोई पॉलिसी सिग्नेचर।
छोटी सी आपसे मैं गुजारिश करूँ, क्या ख्याल है मुझे बताइए, जो भी आप जरा एडवाइस दीजिए अपने, क्या ख्याल है? मैं कह रहा हूँ कि अली जैसे जो प्राइम इंस्टीट्यूट है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट बना लिया उन्होंने, मस्त से, मैं वेरी इंप्रेस। आप ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जरा लगाएं ना और चेक करें ना, ये चीज़ें निकलवाएं और देखें हमें क्या पता चलता है।
मैं तो इससे इतफाक़ करता हूँ, बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी, हम इसके ऊपर फॉलो अप भी कर सकते हैं और मज़ीद इसमें से तहकीक के ज़ाविये निकल सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक पूरा उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट बनाया हुआ है, उसमें बहुत से लोग काम करते हैं, उनसे ही पूछा जा सकता है कि आपके रिफॉर्म पेपर्स जो हैं वो पब्लिकली क्यों नहीं अवेलेबल होते।
चलिए जी, ये शुरू करिए। अंजुम, क्या ख्याल है आपका, या फिर कहेंगे कि सरकार को प्रोटेक्शन में रखें, सरकार को ना छेड़ें?
नहीं, मेरे ख्याल में तो ये बहुत, इसकी बहुत ज़रूरत है कि ये पब्लिक डिस्कोर्स में ये चीज़ें आनी चाहिए कि ये फैसले किस बेसिस पर हो रहे हैं, इसमें कितनी डिस्कशन हुई है, कितनी रिसर्च है, इसके वर्किंग पेपर्स कहाँ हैं, ये सब चीज़ें मालूम करना बहुत अहम है।
चलिए जी अली, थैंक यू वेरी मच, स्टे इन टच, इंशाल्लाह वी विल डू मोर। अगर आप अच्छा काम करते रहेंगे, रिसर्च करते रहे, हमें बताएं, आप हमारे साथ ज़रूर बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, आपने बहुत अच्छी बात की है और इंशाल्लाह वी विल टेक इट अप। थैंक यू अली,
थैंक यू,
थैंक यू। अंजुम, आपके कोई फाइनल थॉट्स हैं?
नहीं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बहस हुई है और बहुत सी चीज़ें वाजे हुई हैं जिनको लेकर आगे चलने की ज़रूरत है।
थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़ टू बोथ ऑफ यू।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।